તારીખ 22/3/1995 શ્રી મદ્રાસચંદ્ર પત્રાંક 609 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 113
પત્રાંક 609 અસંગ પરિણામ છે જીવ કો સુખ હોતા હૈ ઓર સર્વ જિનાગમ મે અસંગતા કે લીએ ઉપદેશ દિયા હૈ પરંતુ અપને આપ કિસી ભી સત્સંગ ઓર સત્પુરુષ કે આશ્રય બિના એસા અસંગ હોના સંભવ નહીં હૈ એસા વિચાર કરકે શ્રી તીર્થંકર દેવને સત્સંગ કો ઉસકા આધાર બતાયા હૈ કે જીત સત્સંગ કે યોગ સે જીવ કો સહજ સ્વરૂપભૂત અસંગતા ઉત્પન્ન હોતી હૈ 6 નંબર કા વચનામૃત હૈ 609 મે એસે તો સત્સંગ ભી એક બાહ્ય સંગ હૈ સત્સંગ ભી બાહ્ય સંગ હૈ ઓર બાહ્ય સંગ સે અંતર સંગ કૈસે હોતા હૈ એ સમસ્યા હૈ ફિર ભી સત્સંગ મે એ સમસ્યા કા સમાધાન હૈ કૈસે અસંગતા પ્રાપ્ત કી જાય કૈસે અસંગતા હો સકે ઉસ વિષય મે સત્સંગ મે સમજ ભી મિલતી હૈ ઓર સત્સંગ કે દૌરાન ઇસ વિષય કા પ્રયોગ ભી સમજ મે આ સકતા હૈ કે કૈસે અસંગ હોના વો વિષય સત્સંગ કે અલાવા કહીં ઓર જગે નહીં હૈ ઓર જીવ અનાદિ સે અનજાના હૈ ઇસલિયે સત્સંગ કા આશ્રય કરના અનિવાર્ય હૈ वहाँ से असंग होने की कला जो है वो कला प्राप्त हो सकेगी। फिर भी इस विषय में कई प्रकार की दिक्कतें हैं, वो बात की चर्चा अब यहाँ से चालू करते हैं कि वह सत्संग भी जीव को कई बार प्राप्त होने पर भी फलवान नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सत्संग मिल जाए इसलिए काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। सत्संग भी कई बार मिला है लेकिन उसका फल नहीं आया है, ऐसा श्री वितराग ने कहा है। वितराग ने जाना भी है और कहा भी है, क्योंकि उस सत्संग को पहचान कर इस जीव ने उसे परम हितकारी नहीं समझा। परम हितकारी लिया है और बात पहचान करके ये परम हितकारी पना लगता है। जिसको पहचान आती है उसको परम हितकारी लगता है, वो पहचान नहीं आती है उसको हितकारी समझ में आता है, लगता नहीं है। समझना एक बात है, लगना अलग बात है। सत्संग हितकारी है ये बात प्राय सभी लोग सम्मत करेंगे। जो लोग सत्संग में आते हैं उनको वो बात की समझ है के सत्संग हितकारी है हमारे लिए, लेकिन हितकारी समझना एक बात है और हितकारी लगना वो एक दूसरी बात होती है। और पहचान होने से परम हितकारी लगेगा, वो एक तीसरी बात होगी। हाँ ठीक बात है, प्रश्न तो अच्छा है कि समझ में आए अभी लगे कैसे। जिस सत्संग में हम जाते हैं तो हमारे आत्मा पर इस सत्संग से फायदा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कितना होता है? इस बात का हमें चेकिंग बार बार करते रहना चाहिए। लगेगा कब? अब दूसरा प्रश्न हम निकालते हैं इसमें से कि लगेगा कब कि जिसको फायदा हुआ ऐसा मालूम पड़ेगा तब, कि ऐसी ऐसी बातों सुनते, ऐसी भावना में आते, ऐसे परिणमन होते, ऐसे परिणमन देखते, हमारी आत्मा पर ऐसी असर होती है जो आगे कभी नहीं हुई है, ऐसी होती है। तो ये यहाँ जो काम हुआ उस पर से लगता है, इसलिए जो समझता है वो बौद्धिक स्तर पे समझता है और लगता है वो फीलिंग स्टेज पर समझता है। दोनों के समझ में बहुत फर्क है। बौद्धिक स्तर पर भी बात समझी जाती है और फीलिंग स्टेज पर भी बात समझी जाती है। जैसे कि हमारी जो प्रकृति है उस पर हम हमेशा संसार के जीव परवश होते हैं, प्रकृति के वश होते हैं। हर जीव संसार में प्रकृति वश होते हैं। सत्संग में आने वाले को प्रारंभ में यहाँ फर्क पड़ता है, उसके प्रकृति पर घाव पड़ता है, प्रकृति कमजोर होने लगती है, प्रकृति का जोर है वो टूटता जाता है, अपने को मालूम पड़ता है। अपने को क्या, साथ में रहने वाले दूसरे को भी मालूम पड़ता है कि उसमें फर्क है। ऐसा अंदाज नहीं था, ऐसा लगता है दूसरे को भी। अच्छा फेरफार होता है तो दूसरे को भी मालूम पड़ता है, साथ में रहने वाले को, तो अपने को तो पड़ता ही है। पर कई प्रकार के अवगुण जाने लगते हैं, कई प्रकार के सद्गुण आने लगते हैं और अगर पूर्णता का लक्ष्य हो जाता है सत्संग के दौरान, पहचान तो बाद में होगी सत्संग की, इसके पहले अगर लक्ष्य बन जाता है तो जीव के विकल्पों की, परिणामों की, विचारों की पूरी दुनिया बदल जाती है, कई प्रकार के अभिप्राय बदल जाते हैं। तो एक बड़ा चेंज आता है वो अभिप्राय में आता है, सबसे बड़ा आता है वो, तो अपने को मालूम पड़ता है कि, और विश्वास भी आता है कि अवश्य हमारा कल्याण होगा ही होगा। तो ऐसा उपकार सत्संग से हुआ है तो उसको परम हितकारी लगेगा, ऐसा लगना जरूरी है, वहां तक आना जरूरी है। सत्संग हितकारी है उतना जाना तो नहीं है, वो बात अधूरी है, पूरी नहीं है। भले हम सत्संग में जाते हैं और समझते ही हैं, मानते हैं बौद्धिक स्तर से कि ये हमारा उपकार का कारण है इसलिए हम जाते हैं, लेकिन उतना ही नहीं होना चाहिए। लगने लगे तब तो आत्मा पर असर आई समझो, लगा नहीं और समझा वो समझ कोरी है। कोरी समझ काम की नहीं है। समझ के साथ आत्म कल्याण की भावना से भीगी हुई समझ होनी चाहिए। तो ये समझ है वो यथार्थता धारण करके आत्मकल्याण की दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। वह सत्संग भी जीव को कई बार प्राप्त होने पर भी फलवान नहीं हुआ ऐसा श्री वितराग ने कहा है, क्योंकि कुछ सत्संग को पहचान कर इस जीव ने उसे परम हितकारी नहीं समझा। वो लगने में पहचान सा काम करती है बड़ी, बहुत लगेगा तो पहचान आएगी तो लगेगा। हाँ, वैसे मान लिया बौद्धिक स्तर पे हितकारी है, लेकिन पहचान नहीं आई तो परम हितकारी है ऐसा लगा भी नहीं, और लगा नहीं तो लगने से समझ होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुई। तो इसका कारण क्या कि बौद्धिक स्तर पे हमको लगा समझ में आया, लेकिन आत्मा में कुछ फायदा होता है तब लगता है। तो वो फायदा जो लाभ होता है वो लाभ से मालूम पड़ता है कि ये सही है।
चोट लगती है,
चोट भी लगती है, गहरी असर पहुंचती है, लाभ भी होता है, ऐसे कई प्रकार के जो फीलिंग के परिणाम होते हैं उस परिणमन से वो सामने जो सत्संग है वो उसकी पहचान आती है कि वो सही सत्संग हो रहा है। उसमें कोई ऐसे हमारी समझ में विपरीत समझ का संस्कार चालू है, हाँ वो चालू है, इसलिए वो समाधान हमको सेट नहीं होता है। वो भी ठीक नहीं है, ऐसा भी प्रकार होता है, और हमने भूतकाल में उल्टे समझ के लकड़े फिट कर दिए हैं। वो गुजराती में कहते हैं समझण में ऊंधा लाकड़ा ना खा होए तो सवड़ो आवे, इस सेटिंग नो थाय। तो एक तो विपरीत संस्कार ग्रहण किए हो, या पूर्वग्रह हमारा हो और वो पूर्वग्रह को हमें छोड़ना नहीं हो और हमारे अभिप्राय से विरुद्ध हो, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा समाधान हमको मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिल रहा हो, ऐसे कई प्रकार के जो परिणाम हैं तो समाधान को समाधान के रूप में ग्रहण नहीं होने देते। हाँ होती है, विपरीत समझण में भी ऐसी दृढ़ता होती है कि आज तक हमने समोसरण में तीर्थंकर की भी नहीं मानी। किसकी नहीं मानी? तीर्थंकर देव की भी नहीं मानी, दूसरे की तो हेरे गेरे की तो कौन मानेगा, तीर्थंकर देव की भी नहीं मानी। अनंत बार गए इनके सत्संग में भी, इतनी दृढ़ता होती है। इसलिए सत्संग है उसकी पहली शर्त वो है कि सत्संग की उपासना सरलता से करना चाहिए। वो सरलता किस प्रकार के कि मैं मेरे हित के लिए सत्संग में आया हूं और जो भी मेरे हित की बात आई वो तो मुझे उसी वक्त शीघ्र फौरन ग्रहण करनी है। उसमें मुझे देर नहीं लगानी है। आज समझ में आया फिर सोचूंगा फिर देखूंगा, ये बात वहां नहीं होनी चाहिए। ऐसा अभिप्राय से तो नुकसान है,
ऐसा अभिप्राय में नहीं है परंतु ये फैक्ट तो है।
फैक्ट हो लेकिन अभिप्राय ऐसा होना चाहिए कि क्यों एक झटके से नहीं छूटता है, ऐसा अभिप्राय बने रखो बनाए रखो, फिर देर देर सवेर हो तो क्षम वो क्षम्य है। लेकिन अभिप्राय में ऐसा रख लिया धीरे धीरे हो सकता है काम, तो ये अभिप्राय गलत है, उसका कभी होने वाला नहीं है। ऐसा है कि हम समाधान तो मांगते हैं लेकिन करना है हमारी मनमानी,
इसलिए हम पूछ रहे हैं उसके प्रति भी हमको श्रद्धा नहीं है।
तो मतलब ये हुआ कि ये सलाह तो मुफ्त में मिलती है
जब हमारे को सामने वाले के ज्ञान में शंका है तो हम प्रश्न करते क्यों?
नहीं करना चाहिए, जब विश्वास नहीं है तो नहीं करना चाहिए, पर हमें अगर अनुसरण करना है तो करना चाहिए, अगर अनुसरण नहीं करना है तो नहीं करना।
विश्वास भी है और अमलीकरण भी नहीं करना है,
तो परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी बात है।
उसका मतलब भूल में कहीं ना कहीं गड़बड़
है। है ही बात होगी, ऐसा भी नहीं है, सहज होता है उसमें दोनों बात साथ में होती ही है। नहीं रहेगा
वो तो है।
परम हितकारी नहीं समझा, परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं की, परम स्नेह से मैंने परम प्रेम से उसकी उपासना नहीं की। हाँ उपासना सत्संग की उपासना और वो भी परम प्रेम से, कृपालु देव की बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है, ये उपदेश है। बाहर में किसी के प्रति प्रेम होता है तो उसके बिना रहा नहीं जा सकता, और सत्संग के बिना रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता है हम देख लें, हमारे परिणाम को तलाश कर ले, पता चल जाएगा कि हमको सत्संग में कितना परम कितना स्नेह है। यहाँ तो परम स्नेह की बात होती है, ज्ञानी भी सत्संग के लिए कितने लालायत होते हैं। वो बाबू जी लिखते हैं ना कि ये पत्र लिखते लिखते आंख में से गरम गरम आंसू टपकते हैं बहते हैं, सत्संग नहीं मिल रहा है हमको कलकत्ता में, ये बात है। ज्ञानी की ये दशा होती है, मुमुक्षु की कितनी होनी चाहिए, इनके पास तो थोड़ी संपत्ति है, तो संपत्ति वाले को तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको नुकसान होवे तो इतना सत्संग का मूल्य है। परम स्नेह से उसकी उपासना नहीं की, और प्राप्त का भी अप्राप्त फलवान होने योग्य संगना से विसर्जन किया है, ऐसा कहा है वितराग देव ने। क्या कहा कि सत्संग प्राप्त था लेकिन अप्राप्त फलवान होने योग्य संगना, इसका अर्थ क्या है के प्राप्त होने पर भी अप्राप्ति से जो फल होता है वैसा ही फल प्राप्ति में रहा, ऐसी संगना में नहीं, ऐसी योग्यता में जीव ने सत्संग के प्रसंग को एक मामूली उदय जान करके उस उदय का विसर्जन कर दिया। सत्संग का बहुत मूल्य आना चाहिए। अन्य मत में भी इसकी बहुत बातें हैं सत्संग की, सत्संग के प्रकरण वहां चलते हैं, 5 नंबर के पत्र में है, 6 नंबर का, 4 नंबर में है। आपका कार्ड अजमेर से लौटकर यहाँ आया, कलकत्ता 1952 का पत्र लिखा हुआ है, 21 जून 1952। आज हुआ 95, कितना साल हो गया, 43 साल हुआ चिट्ठी को, कईयों की तो एज उतनी नहीं हुई होगी। अधिकतर आजकल यहाँ ही रहता हूँ। किस साल में आए, 51 में आए थे, 50 में आए थे, तो 52 में वो लिख रहे हैं कि अधिकतर आजकल यहाँ ही रहता हूँ। योग कुछ ऐसा ही है कि आर्थिक संबंध की अपेक्षा प्रत्यक्ष तौर पर मेरा धार्मिक संघ इस समय दूर सा हो रहा है। आर्थिक कारण की वजह से मेरा धार्मिक संघ दूर सा हो रहा है। अजमेर से सोनगढ़ समीप था, कलकत्ता से तो बहुत दूर हो गया, पर मैं बहुत समय से सोनगढ़ नहीं आ सक रहा हूँ। यह कहना व्यर्थ है कि अंतरंग में यहाँ होते हुए भी मुझे वहाँ की स्मृतियाँ, ऐसा कोई दिन न होगा कि नहीं आती रहती होगी, एक दिन भी खाली नहीं जाता है, ऐसे यहाँ की स्मृतियाँ आती रहती है। लेकिन ये कहना व्यर्थ है। क्या किस मुँह से ये बात करूँ मैं, ये कहना व्यर्थ है मेरे लिए, लेकिन होता तो ऐसा ही है। कुछ गुरुदेव की स्मृति इस समय भी आ रही है, वो आंखों में गर्म आंसू आ रहे हैं कि उनके संग रहना नहीं हो रहा है। उनका असंग रुचि का उपदेश अथवा असंग का उपदेश कानों में गूंजता रहता है और उसकी रमणता से ही यहाँ की उपाधियाँ ढीली सी रहती है। जो उपदेश मिला है इसकी रमणता चलती है, तो यहाँ उपाधि तो बहुत है कलकत्ता में, ढीली हो जाती है। उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ कि कब उस गरजती हुई दिव्य मूर्ति के चरणों में शीघ्र अपने आप को पाऊँ। कुछ ऐसा योग है कि अभी तक मेरा उधर आना होता नहीं है, फिर 4 महीने के बाद का पत्र है। सहज परम निवृत्तिमय कारण परमात्मा का आश्रय कुछ गुरुदेव ने ऐसा बतला दिया है कि उसके अवलंबन से सहज परम अनाकुलता उत्पन्न होती रहती है। उनकी साधक दशा थी, कहीं आने जाने आदि के समस्त विकल्पों रहित अनादि अनंत स्वमें ही स्थिर हूँ, तो कहाँ आना व कहाँ जाना, फिर भी वहाँ न आने का खेद वर्तता रहता है। इतना अंतरंग परिणमन रूप समाधान होने पर भी विकल्प रूप समाधान नहीं है, क्योंकि कारण परमात्मा का आश्रय बताया गुरुदेव ने और उसका अवलंबन चलता है परिणमन में, और सहज परमाणु अनुकूलता भी परिणमन में उत्पन्न हो जाती है। तो आना जाना नहीं आना जाना वो गौण कभी हो जाता है, फिर भी वहाँ आने का खेत तो वर्तता रहता है, वो खेत छूटता नहीं है। इतना परिणमन होने के बावजूद भी हमारा खेत चालू है, ये सहज होता है। उपयोग बाहर जाता है कि नहीं जाता है, कि जाता है, जब उपयोग बार जाता है तो सत्संग के सिवा दूसरा कोई चाह करने वाला कोई प्रसंग है ही नहीं संसार में, तो वही वहां से ही पुष्टि मिलेगी। जो भी आत्मभावों का पोषण मिलेगा वो सत्संग में मिलेगा, रुचि की पुष्टि होगी वो भी सत्संग में होगी। तो सत्संग प्राप्त हुआ फिर भी अप्राप्त फलवान होने योग्य संगना से उसको विसर्जन किया है। यह जो हमने कहा उस बात की विचारणा से हमारे आत्मा में आत्मगुण का आविर्भाव होकर सहज समाधि पर्यंत प्राप्त हुए ऐसे सत्संग को मैं अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। ये सत्संग का महत्व दर्शाते हुए क्या हुआ, कृपालु देव लिखते हैं कि ऐसा जो हमने कहा उस बात की विचारणा से या उस बात का इतना गहरा विचार चला, हमारा ज्ञान उतना गहराई में गया कि आत्म में से आत्मगम का आविर्भाव होने लगा। ऐसे जो परिणति थे वो परिणति में तारतम्यता बढ़ गई और सहज समाधि में ने शुद्धोपयोग में हम आ गए। लगता है के कृपालु देव को सत्संग से आत्मस्थिरता का लाभ हुआ है। कोई ऐसा बलवान सत्संग भूतकाल में मिला है और उस सत्संग के कारण से उनकी आत्मसमाधि पर्यंत की दशा हुई है और उस सत्संग का जो उपकार है वो इस भव में भी भूल नहीं सकते हैं। भूल तो नहीं सकते हैं लेकिन उनके परिणाम उतने आविर्भूत हो जाते हैं कि फिर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। सत्संग की महिमा करते करते शुद्धोपयोग में डूब जाते हैं क्योंकि ये प्रसंग कभी बना है तभी ऐसा हो सकता है। जैसे कि किसी का वियोग में बहुत रोना आया हो तो वियोग का स्मरण से रोना आ जाएगा। ऐसा जिस सत्संग से आत्मलाभ हुआ हो उस सत्संग की महिमा का स्मरण करते फिर आत्मलाभ में आ जाते हैं, आत्मगुण आविर्भाव होने लग जाते हैं। जब ये परिस्थिति सत्संग के विषय में है तो सत्संग का मूल्य कितना होना चाहिए वो समझाने की जरूरत नहीं है। हमने एक अन्य मत की छोटी सी किताब पढ़ी थी, बात तो था कि बुढ़ापे में समय कैसे व्यतीत करना। वृद्धावस्था भी एक मंदिर है ऐसा करके लिखा था। वृद्धावस्था भी एक मंदिर है कि जिस मंदिर में हम हमारे जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। तो लिखने वाली कोई लेखिका बहन थी, काफ़ी अच्छा लिख रही थी, वो भावनगर की कोई थी। हमने किताब मिल गया देवलाली में, उसका कोई मुमुक्षु ने दे रखा हमको, मैं पढ़ा का ठीक है, ब्राह्मण थे। उसने सत्संग में वृद्धावस्था में ऐसा समय अच्छी तरह से गुजरता है, अच्छा अच्छी तरह से गुजरता है क्योंकि एक तो शरीर सब शिथिल हो जाता है तो फिजिकल ड्यूटी के लिए वो लायक नहीं रहता है। अब मानसिक परिस्थिति में अगर कोई अकेले बैठे रहे तो वो दिमाग खराब होता है, कई प्रकार के नहीं आने योग्य विचार आने लगते हैं, तो उनको कैसे ठीक करना। उसमें उसने एक प्रकरण सत्संग का लिखा था कि वृद्धावस्था में सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि समय तो बहुत है। तो सत्संग ज़्यादा कब करेंगे कि सत्संग से जो लाभ होता है इस तब उसका महत्व समझ में आता है। तो उसने वहां तक लिखा था कि सत्संग तो मनुष्य का प्राण हो जाना चाहिए, प्राण शब्द का प्रयोग किया था, खुराक नहीं लिखा था। सत्संग ये खुराक है ऐसा नहीं लिखा है, प्राण लिखा था शब्द। अच्छा है, अन्य लोगों को भी उतनी तो समझ है, जबकि जैन दर्शन में तो बहुत सी बात है ज्ञानियों ने तो बहुत बातें की हैं इस विषय में, फिर भी हम उतना नहीं समझे, तो फिर हम आत्महित के लिए उन्हें कहा है उसी बात को, बात की विचारणा से हमारे आत्मा में आत्मगुण का आविर्भाव होकर सहज समाधि पर्यंत प्राप्त हुए ऐसे सत्संग को मैं अत्यंत अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। तो अभी भी बहुमान आता है, भूतकाल में फायदा हुआ, वर्तमान में हो रहा है, तो सत्संग की भक्ति कर दिया, इधर लिखने में, पत्र लिखने में भक्ति किया है। अवश्य इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण जमान कर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग की ही सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है। देखो क्या शिक्षा देते हैं, अवश्य जरूर इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर, सर्व धार्मिक साधनों को गौण कर देना, पूजा भक्ति और यात्रा, क्या करें, हमको यात्रा करनी थी इसलिए हम एक महीना तक सत्संग छोड़ दिया, एक महीना यात्रा में चले गए, गड़बड़ है सब, सत्संग मिलता हो तो यात्रा नहीं करना, हमारे पूजा के समय में सत्संग मिलता हो तो पूजा छोड़ देना, जो भी सत्संग के सिवा कोई भी क्रिया हो, धार्मिक साधन हो, गौणता कर देना। क्यों कि निर्माण का मुख्य हेतुभूत सत्संग है, सबसे बड़ा साधन वो है, बड़ा लाभ का साधन को गौण करे और जो छोटा लाभ का साधन है उसको मुख्य करे, ये बुद्धिमानी कहाँ की, वो विपरीत बात है, उसमें क्या है, विपरीतता है, जीव उल्टा चलता है और आत्मकल्याण को चाहता है, उल्टा चलता है और आत्मकल्याण को चाहता है, दो बात बनने वाली नहीं है। अवश्य इस जीव को प्रथम सर्व साधनों को गौण मानकर निर्वाण के मुख्य हेतुभूत सत्संग को ही, सत्संग की ही उपासना करने योग्य नहीं, सर्वार्पणता से उपासना करने योग्य है। एक शब्द और लिखा है, लगाया है कि हमारी सर्वार्पण बुद्धि होनी चाहिए, हैं? मतलब वो है कि हमारी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इतनी कंडीशन के साथ इतना हो, हमारा हो जाए फिर करेंगे वो बात नहीं है, कोई भी कोई पण भोग से, एट एनी कॉस्ट हमको सत्संग चाहिए, इतना भोग नहीं दे सकते वो सत्संग के अधिकारी नहीं, तो सत्संग के अधिकारी नहीं वो आत्मकल्याण के भी अधिकारी नहीं है, ये बात है। तभी तो सत्संग की पहचान आई है, निर्वाण का मुख्य हेतु है वो, निर्वाणपण से, निर्वाण पद से कौन सा पद ऐसा है, सीए का पद ऐसा है जो निर्वाण पद से भी अधिक हो सकता है, है? होता है कि नहीं होता है? कौन सा पद ऐसा है कि जो निर्वाण पद से भी अधिक है, हम ये शर्त तो रखेंगे, कोई ऐसा पद नहीं है जगत में, कोई ऐसा सर्वोत्कृष्ट पद है उसकी उपासना सर्वार्पण बुद्धि से होती है। वरना क्या बात होता है कि हमको खरीदने हैं हीरा हीरे के आभूषण और हम पैसे लाए हैं सब्जी तरकारी के, हमारे जेब में 10-20-25 रुपये हैं जिसमें सब्जी तरकारी आती है और हम जाते हैं जोहरी के दुकान पे कि हमको तो हैं
पैसे लेके भी नहीं अप्रूवल बेसिस पे जाते
हैं मतलब
ऐसी जगह बाद में पेमेंट कर
देंगे। नहीं वो तो अच्छे हैं आजकल, वरना जोहरात वाले को तो देखने का पैसा लेना चाहिए कि 10-20-25 रुपया तो जोहरे का सैंपल देखने को आपको भरेंगे तब तो देखने को मिलेगा, खरीदने का पैसा अलग होता है। आप कहीं भी जाओ, स्टेशन पर टिकट लेने को जाओगा, पहले टिकट दे दो बाद में पैसा चुकाएंगे, चलता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं चलता है, पहले पैसा देना पड़ता है बाद में टिकट मिलती है। संसार के स्टेशनों की टिकट भी पैसा देने के बाद मिलती है, ये निर्वाण की सिद्धाली की टिकट हमको पहला चाहिए और पैसा हम बाद में देंगे। ऐसा तो हमको विश्वास नहीं है, टिकट देने वाले के प्रति हमको विश्वास नहीं है, ये बात है। ये बोध नहीं है, कृपालु देव का ये बोध नहीं है, हम लोगों के लिए ये आज्ञा है इनकी, हमें आज्ञा अंगीकार करनी है, आज्ञाकारी के रूप में रहना है या नहीं रहना है वो अपने आप नक्की कर लें, ये आज्ञा है। ऐसे सत्संग करो तो, वरना सत्संग के अधिकारी नहीं और आत्मकल्याण के भी अधिकारी नहीं है। सर्वार्पणता से उपासना करना योग्य है कि जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं, अगर सर्वार्पणता आ गई तो फिर जो भी साधन कर हुए सब सुलभ हो जाएंगे। एक दफे सर्वार्पणता में आ जाओ सब साधन सुलभ हो जाएंगे, यानी सब साधन का लाभ है वो आसानी से मिल जाएगा। जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं ऐसा हमारा आत्म साक्षात्कार है। देखो क्या तसल्ली देते हैं, ऐसा हम जानते हैं मानते हैं वो बात नहीं है, हमारा आत्म साक्षात्कार से ये बात कर रहे हैं, अनुभव किया है इस बात का। लिखने के ठोसपना कितना है, सत्संग निर्वाण का साधन है और सर्वार्पणता से यदि इसकी उपासना की गई तो निर्वाण अवश्य मिलेगा, ये हमारा आत्म साक्षात्कार से कहते हैं, अनुमान लगा के नहीं कहते, ग्रंथ पढ़ करके नहीं कहते, हमारा गुरु ने कहा है इसलिए नहीं कहते हैं, हमारा आत्म साक्षात्कार से कहते हैं। उस सत्संग के प्राप्त होने पर यदि इस जीव का कल्याण प्राप्त न हो, ऐसा यथार्थ सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि इस जीव को कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य ही इस जीव का ही दोष है। गुजराती में वाक शब्द लिखा से आ जीव नो वाक छे, वाक नो अर्थ शू, वाको चाइलो छे, वहाँ वड़ाक टर्न सीधा नहीं चला, टेढ़ा चला है। यथार्थ सत्संग मिला और इस जीव का कल्याण नहीं हुआ। यानी हम स्वाध्याय करते हैं, कई सालों से करते हैं, हमारे में यथार्थता नहीं आई या हमारे में कोई निर्मलता नहीं आई। समझना चाहिए कि विपरीतता में हम चल रहे हैं। हम कहीं न कहीं उल्टा चल रहे हैं। ज्ञानी पुरुष का योग होने के बाद जो आत्मभाव से, स्वच्छंदता से, कामना से मैंने संसारिक पदार्थों की प्राप्ति के पीछे लगने से और ऐसे कार्यों के रस से ज्ञानी के वचनों की उपेक्षा करके अनुपयोग परिणामी होकर के मैंने सावधानी आत्मकल्याण की छोड़ करके संसार का सेवन करता है वह पुरुष, मैंने वह आत्मा तीर्थंकर के मार्ग से बाहर है, ऐसा कहने का तीर्थंकर का आशय है। मार्ग को मार्ग से बाहर निकाल दिया उसको, कुछ भी करता हो। तीर्थंकर कहते हैं कि तीर्थंकर का मार्ग आखिर का, यदि स्पष्ट प्रीति से संसार करने की इच्छा होती हो, संसार भोगने की, संसार में रहने की स्पष्ट प्रीति से इच्छा होती हो, तो उस पुरुष ने ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं, अथवा ज्ञानी पुरुष के दर्शन भी उसने किए नहीं, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं। देखो, ज्ञानी पुरुष मिलना, दर्शन होना, उसका वचन सुनने में उतना आ जाता है कि उसको लगना चाहिए कि मेरा मार्ग कोई अलग है, मैं इस संसार से निवृत्त होकर के मुझे मुक्त होना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे मुक्त होना है। तभी उसने ज्ञानी पुरुष के वचन सुने हैं और तभी उसने ज्ञानी पुरुष के दर्शन किए हैं। बहुत ठोस बातें आई हैं। क्योंकि दर्शन वो इतना तगड़ा होता है तो चोट नहीं पहुंचेंगे। वो व्याख्यान सार में कृपाल उदेव लिखते हैं कि जिसने तगड़ी रजाई ओढ़ी हो उसको श्री गुरु की उपदेश की लकड़ी का मार नहीं लगता, और जिसने धोती जैसा पतला कोई चद्दर ओढ़ी हो उनको श्री गुरु की उपदेश की लकड़ी का मार बराबर लगेगा। तो ये जो ओढ़ने की चीज है वो दर्शन मुखी होती है। इसका दर्शन मुखी ने अपने परिणाम, दर्शन मुखी परिणाम, कर्म के परमाणु नहीं, अपने दर्शन मुखी जो परिणाम है वही आवरण है। उपदेश को असर नहीं पहुंचने में आड़ा कौन आता है कि अपने परिणाम आड़ा आता है। हम दर्शन मुखी परिणाम के असर नीचे बराबर ऐसे चलते हैं कि उपदेश हमको असर नहीं करता। जैसे कोई बधिर होते हैं, डेफनेस आती है, तो क्या होता है कि शब्द के, आवाज के, वचन के वाइब्रेशन तो जाते हैं कान में, लेकिन पर्दे पे कोई असर नहीं आती है, रिबाउंड होकर के वापस चले जाते हैं वो वाइब्रेशन। ऐसे गुरु के वचन हैं वो रिबाउंड हो जाते हैं, जैसे बहरे को सुनाई नहीं देता ऐसे उसको सुनाई दिया नहीं। दर्शन वो ऐसा तगड़ा होता है, जीव को संसार में अनंत काल रुलाने वाला और अनंत अनंत दुखी करने वाला कोई परिणाम हो तो ये दर्शन मौका है। बहुत उसकी विपरीत शक्ति भी बहुत है, मिथ्या श्रद्धा है, पर इसके अविपरीत मैंने सही शक्ति भी बहुत है। वो पूरी शक्ति से काम करता है, उल्टा भी चलता है तो पूरी शक्ति से, सुलटा भी चलता है तो पूरी शक्ति से, ऐसा होता है।
साक्षात भूत स्वरूप की तरफ लक्ष्य करें तो ये तो लंगड़ा हो जाएगा।
साक्षात
भूत स्वरूप की तरफ अगर लक्ष्य करेंगे तो
खुद को कुछ न कुछ तो ये होना चाहिए, विशेषता आनी चाहिए, अधिकता आनी चाहिए। अधिकता अगर नहीं आई, जिसकी अधिकता रही परिणाम वहां झुकने लगेंगे। अधिकता आनी चाहिए, सत्संग की अधिकता आई परिणाम सलट जाएंगे सब। देखने की विचार करने का दृष्टिकोण पूरा का पूरा बदल जाना चाहिए। तूने गुरु चरणन की बात लिया तो उलट भाई मेरे नैनन की लिया। गुरु के चरण की लगन से ही मेरी दृष्टि बदल गई, उलट गई। जो पदार्थ देखने से ही व्यामोह होता था, वही पदार्थ देखने से वैराग्य होता है। देखो उलट भाई, दृष्टि उलट हो गई बिल्कुल, आंख पलट गई बिल्कुल। एक गुरु चरण की भक्ति में तो भाव सागर सूख गया। अब क्या है, इसकी फिक्र क्या करे कि तिरना नहीं, तिरना पानी नहीं है उसमें, खत्म हो गया। क्रिकेट का मैदान हो गया, समुद्र है वो मैदान हो गया।
खाली बैटिंग करना है।
वरना तो समुद्र तिरना आसान नहीं है, समुद्र तिरना आसान नहीं है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, माइल दो माइल से ज्यादा तिर नहीं सकता, तिरने के प्रैक्टिस वाला। समुद्र में तिरने को लोग जाते हैं, माइल दो माइल से ज्यादा नहीं तिर सकता। उसमें भी थक गया, एक आदमी मिला था मुंबई में, डेली का प्रैक्टिस, और रोज थोड़ा 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 समुद्र में आगे जाए, माइल दो माइल तक तिरने लग गया प्रैक्टिस बढ़ाते वक्त। एक दफे ऐसा हुआ, वापस आ रहा था, किनारा ज्यादा दूर नहीं था लेकिन थक गया। ओहो, उन्होंने मर गया मैं, अभी इधर ही डूब जाऊंगा। थकान ऐसी चीज होती है, ऐसी थकान संसार के आनी चाहिए, आगे नहीं चल सके, फिर आगे नहीं चल सके, थकान लगे वो आगे नहीं चल सके। क्या कहते हैं, यहां तो ऐसा लेना चाहिए कि उस सत्संग के प्राप्त होने पर यदि इस जीव को कल्याण प्राप्त न हो अंश मात्र भी, तो मुमुक्षु की भूमिका में क्या होता है कि उसको निर्मलता आती है, और वैचारिक परिस्थिति में खड़ा है तो विचारों में यथार्थता आती है, अभिप्राय यथार्थ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो अवश्य इस जीव का ही दोष है। किस प्रकार का दोष है, विपरीतता में खड़ा है कहीं न कहीं, इसलिए उनको न निर्मलता आती है न यथार्थता आती है, क्योंकि एक तो पूर्वग्रह बहुत सबसे बड़ा कारण है। पूर्वग्रह होता है वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है पूर्वग्रह को अनुसरण करने से पैदा होने वाला स्वच्छंद। स्वच्छंद जीव को कब होता है कि अपना पूर्वग्रह जो नहीं छोड़ता है वो स्वच्छंद में जाता है। एक पूर्वग्रह, ये नीचे चार कारणों में वो दो कारण मुख्य है, उसमें मिथ्या आग्रह यानी पूर्वग्रह, उल्टा पकड़, और उस पकड़ को अनुसरण करके जो परिणमन होता है वो हमेशा हमेशा स्वच्छंद रूप ही होता है। ये दोनों कारण से जीव को निर्मलता नहीं आती। देखिए, ये एक ऐसा कृपालु देव के वचनामृत का ग्रंथ है कि जिसमें मुमुक्षु के लिए मुमुक्षु की भूमिका के सैकड़ों मार्गदर्शन इतने दिए हैं कि कोई भी मुमुक्षु को अगर सुलझना है तो पर्याप्त मात्रा में बात है। अखंड मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है इस वचनामृत से। ऐसे वचन है। चाहिए क्या कि मेरे प्रयोजन की बात कहाँ किस जगह पे कही उसकी चोट लगनी चाहिए और उसको अवधारण करने का, अंगीकार करने का, अमलीकरण करने की तैयारी खुद की हो जानी चाहिए। अवश्य अवश्य आत्मकल्याण हो ही जावे। ऐसी चीज हमारे हाथ में है। इतना बड़ा ग्रंथ 10 रुपये में मिलता है मुफ्त के भाव में। इसका बाइंडिंग भी 10 रुपये में नहीं होता है। ये जो ग्रंथ है इसका बाइंडिंग 10 रुपये में नहीं बनता है, जिल्दनी में होता इसका 15-20 रुपया लग जाता है, फिर भी पूरा ग्रंथ मिलता है। इतनी चीज हमारे हाथ में है और हम इसका कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी विपरीतता बहुत है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। जीव टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। वरना अपने मतलब की, प्रयोजन की बात कोऑर्डिनेशन करके आत्मकल्याण किए बिना रहे नहीं। इतना वजन हाथ से भी अगर वजन नहीं उठाना है तो दिमाग से तो कहाँ से उठाएगा इस बात का वजन। अगर पेपर को भी हाथ से नहीं उठाना है तो उसमें रहे वचनामृत तो दिमाग में ग्रहण संग्रह कैसे करेगा। हाँ, पर कौन सा कब वचन किसको लागू पड़ेगा, क्या वचनामृत तीर की तौर मर्मस्थल में मर्मस्थल को स्पर्श करेगा, इसका तो कोई कह नहीं सकते। कम से कम उतना करें, पूरा ग्रंथ पढ़ करके, पढ़ते पढ़ते अपने को अपनी योग्यता में जो भी लाभकारी लागू होने वाली बातें हैं उनकी एक अलग सी नोट बना लें और उनको और हमें पॉकेट बुक की तरह साथ में ही रखें। 24 घंटा रख सकता है, फिर चाहे बस में मुसाफरी करता हो, ट्रेन में करता हो, प्लेन में करता हूँ, कहीं भी करता हूँ। जिसको व्यवस्था बिठानी है तो मैनेजमेंट तो हो ही सकता है। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा ग्रंथ तुम लेकर हर जगह फिर सको। छोटी सी डायरी तो कहीं भी रख सकते हो। तो अपनी मतलब की बात ले लेना है।
खाने के लिए टिफिन कैरी करके घूम सकते हैं, पानी पीने के लिए वाटर बॉटल कैरी करके घूम सकते हैं, निज के परिणाम के लिए ग्रंथ कैरी करके निकल सकते हैं।
उतना तो हमारा बच्चा भी करता है। स्कूल पे जाता है तो नाश्ते का वो बॉक्स और पानी की बोतल दो ही रख लेता है, तो उतना तो बच्चा भी करता है। उसको भी किताबें बहुत धोनी पड़ती है, फिर भी दो बात साथ में रखता है कि नहीं रखता है। जीव को जरूरत लगे तो सब करता है, पर जरूरत नहीं लगती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। सीधी सादी बात वो है। अवश्य ही जीव का दोष है, क्योंकि उस सत्संग के अपूर्व, कैसा योग है, अपूर्व योग, अलभ्य योग और अत्यंत दुर्लभ योग में भी उसने उस सत्संग के योग के बाधक अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं किया। थोड़ा विस्तार से इस बात को लेंगे कि क्या क्या अनिष्ट कारण हैं जिसका उस सत्संग को निष्फल करने वाले होते हैं और सत्संग का मूल्य नहीं आने देते, वो बात इधर रखिए, यहाँ तक रखें।
Amen.